ಗಿರಿವರ ಧಾರಿ
ಗೋಪಿ ಜನವ
ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ
ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ
ಜನರಂಜನ ಯಮುನಾ ತೀರ ಜಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸವಿ ಗೌರಭಕ್ತವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ವೇದ ಕಾ ಅರ್ಥ ಹೋತಾ ಹೈ ಜ್ಞಾನ तो इस भौतिक संसार में जो भी जीव है सब अज्ञान में है हरे कृष्ण कृष्ण तो भौतिक जगत में सभी जीव अज्ञान में, इसका अर्थ है कि हम सब लोग अज्ञान में हैं। कभी कभी ऐसा लगता है प्रवचन सुनने के बाद, जो सुनते रहते हैं वो सोचते हैं कि सब ज्ञान में है, दूसरे लोग अज्ञान में हमें छोड़कर। तो वेद का ज्ञान अर्थ होता है ज्ञान। तो वेद विद विद शब्द से आता है, तो विद का अर्थ है कि जानना, तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान। सो विद्यार्थी मतलब जो वेदों के ज्ञान को अर्जित करने के लिए इच्छुक है उसको विद्यार्थी कहते हैं। और विद्यालय मतलब जहाँ पर वेदों का ज्ञान प्रसार किया जाता है उसको विद्यालय कहते हैं। तो ऐसे अलग अलग शब्द आते हैं इससे। तो वेद स्वयं प्रमाणित है, वो उनको उनको सिद्ध करने के लिए कोई अन्य प्रमाण की जरूरत नहीं है। कभी कभी लोग कहते हैं साइंटिफिकली प्रूविंग, साइंटिफिकली प्रूव्ड। भारत में आप कोई बोलेंगे साइंटिफिकली प्रूव्ड उसको बहुत गंभीरता से लेते हो, क्योंकि भारत में साइंस को बहुत सम्मान किया जाता है। हाँ, विज्ञान, आधुनिक विज्ञान को साइंस बोले तो हम लोग आधुनिक विज्ञान के बारे में बोल रहे हैं। तो सब कुछ वो आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं, लेकिन आधुनिक विज्ञान परिपूर्ण नहीं है। और वेदों को आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से सिद्ध करने का अर्थ है कि एक सूरज को वो टॉर्च दिखाने के समान है। तो सूरज को टॉर्च से देखना देखने की जरूरत है नहीं है ना, तो उसको मूर्ख कहते हैं जो ऐसे देखने के लिए सो। तो वैसे ही वेदों को आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से सिद्ध करने के लिए कोई प्रयास करते हैं तो उनको मूर्ख कहना चाहिए, क्योंकि वेद स्वयं प्रमाणित है, तो वो परिपूर्ण है। तो भगवद गीता भी एक वैदिक शास्त्र, कई सारे वैदिक शास्त्र है, भगवद गीता भी एक वैदिक शास्त्र है। तो भगवद गीता महाभारत का एक अंग है। तो महाभारत को वेदों में पंचम वेद कहा गया, वेदों में श्रीमद् भागवत में पंचम वेद उच्चते। तो महाभारत के एक भाग है वो श्रीमद् भगवद गीता। तो सभी वेद शास्त्रों में तीन विषयों के बारे में बताया गया, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। तो संबंध या हम लोग हम बता रहे थे वेद का अर्थ होता है ज्ञान। तो ज्ञान को स्वीकार करने से क्या होता है हम लोग, तो अज्ञान से मुक्त हो जाते हैं। और अज्ञान, अज्ञान से क्या हो जाता है, क्यों मुक्त होना चाहिए अज्ञान से, अज्ञान से सभी दुख आते हैं। सो इग्नोरेंस लीड्स टू सफरिंग। तो अज्ञान से सभी दुख आते हैं, कष्ट आते हैं। तो कष्ट से मुक्त होने के लिए हमें अज्ञान से मुक्त होना चाहिए, अज्ञान से मुक्त होने के लिए हमें ज्ञान में आना चाहिए। तो वेदों, वेद हमें पहले क्या बताते हैं, संबंध ज्ञान बताते हैं। तो संबंध ज्ञान का अर्थ होता है हम कौन है और भगवान कौन है, हमारे भगवान के साथ क्या संबंध है, इसको संबंध ज्ञान कहते हैं। तो एक अज्ञान का लक्षण है कि दुनिया में सभी लोग सोचते हैं कि अपने आप को ये शरीर से अपने आप को पहचानते हैं, उसको अज्ञान कहते हैं। भगवद गीता का पहला परिभाषा, अज्ञान का परिभाषा, कि शारीरिक भावना जो है देहात्म बुद्धि कहते हैं उसको, बॉडीली कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ। सो अपने आप को इस शरीर से पहचाना, आप कौन हैं आप पूछेंगे तो मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं अमेरिकी हूँ, पाकिस्तानी हूँ, इसलिए मुझे भारत से युद्ध करना चाहिए। तो मैं हिंदू हूँ इसलिए मुसलमानों को जलाना चाहिए। तो ये सब चीज़ क्या है, अज्ञान का लक्षण है, क्योंकि हम अपने आप को इस जहाँ पर हम लोग जन्म लेते हैं, किस परिवार में, किस जगह पर, कोई ऐसे जाति समूह देश जहाँ पर हम लोग जन्म लेते हैं उसके अनुसार हम अपने आप को पहचानते हैं। तो जन्म के कारण हम लोग अपने आप को ये शरीर, शरीर इसका अर्थ है कि हम लोग अपने आप को इस शरीर से पहचानते हैं। तो भगवद गीता में पहले अर्जुन को, अर्जुन भी अज्ञान में थे और अज्ञान में वश में आकर वो अपने कर्तव्य या जिम्मेदारी है वो नहीं निभा रहे थे, और भगवान की सेवा करने के लिए वो तैयार नहीं थे वो। तो क्योंकि ये कुरुक्षेत्र युद्ध भगवान की इच्छा थी कि वो हो, और सही राजा जो धर्म के, धर्म को पालन करते वैसे राजा हो दुनिया में, भगवान का इच्छा था, क्योंकि भगवान धर्म स्थापना, धर्म के पिता है भगवान, धर्म स्थापना करने के लिए आते हैं, उसके लिए सही धार्मिक राजा भी होना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अर्जुन भगवान को सहायता करने के लिए कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में युद्ध करना उनका सेवा था। तो अज्ञान में आकर उनको भगवान की सेवा नहीं करना चाहता था, और अपने जो कर्तव्य है भौतिक दृष्टिकोण से भी, जो क्षत्रिय का धर्म होता है वो भी का पालन नहीं करना चाहते थे। तो इसके कारण भगवान उनको ये आत्मज्ञान प्रदान करते हैं, आप आत्मा हो, ये शरीर नहीं हो, शरीर शारीरिक आसक्ति में आकर आप अपने कर्तव्य और सेवा को भूल रहे हो। तो आत्मा अंत में क्या है, भगवान के अंश है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। तो भगवान बहुत ही तार्किक दृष्टिकोण से वर्णन करते हैं उसको। आजकल जो ऐसे ये स्कूल में वगैरह सिखाया जाता है ना, आत्मा में ना आत्मा को नहीं मानना चाहिए करके, लेकिन भगवान बहुत तार्किक दृष्टिकोण से लॉजिकली एक्सप्लेन करते हैं। सो देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मोह्यते। तो जैसे हम लोग शरीर को बदलते हैं, सो कौमार अवस्था से यौवन अवस्था, यौवन अवस्था से वृद्ध अवस्था, तो शरीर बदल रहा है लेकिन व्यक्ति नहीं बदल रहे, व्यक्ति वही है। तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति इस बदलता हुआ शरीर से भिन्न है। तो वो व्यक्ति कौन है? वो आत्मा है, जीवात्मा है। जब किसी का मृत्यु हो जाता है तो हम लोग कहते हैं ना, वो चले गए करके। कौन चले गए? शरीर तो वहीं पर पड़ा है कि ना? तो ये सब वह तर्क प्रदान करते हैं भगवान। तो वैसे देखेंगे तो शास्त्रों में जो तर्क प्रस्तुत किया है उसका समान कोई कोई लॉजिक रीजन नहीं दे सकते। दुनिया में कितना भी बड़ा वैज्ञानिक हो, कितना भी बड़ा दार्शनिक हो, तो सबसे बड़ा है ना, उसको रैशनल कहते हैं ना अंग्रेजी भाषा में, जो जो कुछ भी तार्किक दृष्टिकोण से विवरण किया गया है उसको रैशनल कहते हैं। तो पाश्चात्य देश में ऐसे लोग कहते हैं, रिलीजन इज फेथ एंड साइंस इज रैशनल, ऐसे कहते हैं वो लोग, क्योंकि साइंस में सब कुछ लॉजिकली एक्सप्लेन किया जाता है ऐसे। तो लेकिन लॉजिक में भी अलग अलग स्तर हो सकते हैं, तो सब लोग एक समान का लॉजिक नहीं हो सकते हैं, है कि ना? और अंत में तर्क क्या है? वो परिपूर्ण नहीं है। तार्किक दृष्ट तर्क जो भगवान बोलते हैं वो परिपूर्ण है, क्योंकि भगवान से भी बढ़कर और कौन तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं, है कि नहीं? तो भौतिक हमारे जो तर्क है वितर्क है वो परिपूर्ण नहीं है। एनीवे, तो ये संबंध ज्ञान है। और अभी हम लोग क्या है, माया के प्रभाव में आकर हमारे संबंध को भगवान से, भगवान के साथ जो संबंध है उसको भूल गए हम लोग, भगवान को भी भूल गए और उनके साथ जो संबंध है वो भी हम लोग भूल गए। तो इसलिए इस संबंध को स्थापित करने के लिए एक प्रक्रिया बताया गया है तो वेदों में, उसको अभिधेय कहते हैं। तो अभिधेय में भी अलग अलग प्रकार के प्रक्रिया बताए गए हैं। जैसे भगवद्गीता में भी कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग और भक्ति योग, ये सब चीज बताया गया है। अंत में भगवान क्या बोलते हैं? सभी योग योग पद्धतियों का अनुगमन करने का उद्देश्य है भक्ति के स्तर पर आना, क्योंकि भक्ति क्या है? वो शाश्वत है, क्योंकि हमारे भक्तियुत संबंध है भगवान के साथ, प्रेममय संबंध है। इसलिए अंत में सभी योग पद्धतियों को पालन करके हमें भक्ति के स्तर पर आना है। तो और इसलिए भक्ति को क्या है, सर्वोच्च योग पद्धति भी बताया गया और वो शाश्वत भी है। तो इसका बहुत गुणगान किया गया। वास्तव में भगवद गीता में तो सिर्फ भक्ति का ही बार भक्ति के बारे में ही बताया गया है। सिर्फ उसको तुलनात्मक दृष्टिकोण से समझाने के लिए भगवान अन्य योग पद्धतियों को वर्णन करते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस, तुलनात्मक दृष्टिकोण से। तो इसलिए सिर्फ भक्ति का अनुमोदन किया गया है सभी वेद शास्त्रों में और भगवद्गीता में। और इसका फल क्या हो जाता है? हमारा संबंध जो है भगवान से फिर से जुड़ जाता है, हम लोग भगवान के प्रति प्रेम को जागृत कर सकते हैं। वो प्रेम क्या है? वो प्रयोजन है। तो वो उसका फल है वो। तो ये तीन विषय है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। और भक्ति हमें करना चाहिए, लेकिन उसके पहले हमें क्या करना चाहिए? बहुत अच्छी तरह से ये संबंध ज्ञान को भी समझना चाहिए। तो कैसे हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं, तो हमारे क्या क्या शारीरिक आसक्तियाँ हैं, शरीर के साथ पहचानने के कारण बहुत सारे आसक्तियों को हम लोग इस जगत में बनाए हैं। तो वो क्या क्या है, कैसे जीव भौतिक जगत में बंधित है, अलग अलग गुणों के प्रभाव में बंधित है, काल के प्रभाव में है, और कर्म बंधन, अलग अलग प्रकार के कर्म होते हैं, उन अलग अलग कर्मों से कैसे बंधित है, ये सब चीज़ भगवद गीता में भगवान वर्णन करते हैं। तो और भगवान के स्थिति को भी समझना चाहिए। तो भगवान का स्थिति नहीं समझेंगे तो क्या हो जाता है, हम लोग भगवान को भी सहज समझेंगे और भक्ति को भी बहुत सहज समझेंगे, है ना। तो इसके कारण बहुत सारे तो हमारे भक्ति में मिश्रण आ जाता है। तो उसको अलग अलग प्रकार के मिश्र भक्ति कहते हैं।
बात ना कीजिए, अगर आप मुस्कुराए तो बैठ रहे तो बाहर चले जाइए।
अल्टीमेटम वो सो हम लोग भगवान के स्थिति को भी अच्छी तरह से समझना चाहिए। तो विशेष करके भगवान को हमें सहज नहीं समझना चाहिए। तो बंगाल में ऐसे कई सारे भक्त हुए लोग, वो चैतन्य महाप्रभु की प्रचार के कारण बहुत सारे भक्त बन गए, लेकिन वो सही प्रकार से भगवान को समझने के, अपने स्थिति को या भगवान के स्थिति को समझने के नहीं समझने के कारण तो उनका जो भक्ति क्या हुआ, वो मिश्रित हुआ। तो उन सभी संप्रदायों को क्या कहते हैं, सहजीय संप्रदाय कहते हैं, जो भगवान को भक्ति को बहुत सहज समझते हैं। तो इसलिए भगवद गीता में बहुत विस्तार से भगवान उनके शक्तियों के बारे में, उनके स्थिति के बारे में, उनके सर्वोत्तता के बारे में, तो उनकी भगवत्ता के बारे में वर्णन करते हैं बहुत विस्तार से। तो श्रील प्रभुपाद जी हरे कृष्ण मंत्र से आकर्षण किया सबको, हरे कृष्ण मंत्र को कीर्तन करके आप जानते होंगे। तो जब 1965 में वो अमेरिका में गए, वो अभी हम लोग प्रवचन से पहले बहुत सारा कीर्तन किया हम लोगों ने, तो श्रील प्रभुपाद जी पार्क में बैठकर अकेला कीर्तन किया करते थे। वो न्यूयॉर्क में वो एक पार्क है टॉमकिंसन स्क्वायर पार्क करके, वहाँ पर बैठ के एक कीर्तन किया करते थे। तो वो कीर्तन के द्वारा आकर्षित किया उन्होंने, लेकिन वो कीर्तन के द्वारा, कीर्तन तो भगवान के कीर्तन रस में मग्न होना वो सार है, लेकिन प्रभुपाद जी बहुत सारा ये संबंध ज्ञान को प्रचार किया उन्होंने, दर्शन को, फिलॉसफी, भगवद्गीता के जो दर्शन तत्व दर्शन है, तो उसको दिन रात वो प्रचार करते थे। रात को सुबह उठ के वो ख्याल वो ग्रंथ लिखते थे वो। फिर उसके बाद जब वो सुबह टहलने के लिए जाते थे, मॉर्निंग वॉक, वहाँ पर भी बहुत सारे वो ये सब तत्व दर्शन को प्रचार करते थे अपने शिष्यों को या कुछ अनुयायियों को। इसलिए बहुत सारा उनका मॉर्निंग रिकॉर्डेड मॉर्निंग वॉक्स है ना, वो मॉर्निंग वॉक कन्वर्सेशंस बोलते हैं उसको। तो वो सब रिकॉर्डेड है उनका कन्वर्सेशंस, वार्तालाप। तो फिर उसके बाद में मंदिर में आके गुरु पूजा दर्शन, गुरु पूजा होने के बाद भगवद गीता श्रीमद् भागवत के ऊपर प्रवचन करते थे। फिर उसके बाद वो अपने में जो भी भक्तों के जो अलग अलग प्रश्न है वो खतों के द्वारा उसको उत्तर देते थे, और या कोई मैनेजमेंट के संस्था के मैनेजमेंट के विषय जो है उसमें भी वो बहुत सारे शिक्षा दिया उन्होंने, तत्व दर्शन फिलोसॉफिकली सब कुछ वो एक्सप्लेन करते थे। तो फिर उसके बाद दोपहर में शाम में फिर से वो कोई उनको मिलने के लिए आते तो उनको प्रचार करते थे, या कोई नहीं है तो अपने शिष्यों को प्रचार करते थे। फिर शाम को भगवद गीता के ऊपर प्रवचन करते थे या अलग अलग जगह पर प्रचार करते थे। तो ऐसे सुबह से लेकर शाम तक वो ऐसे ये तत्व दर्शन को प्रचार किया उन्होंने। तो आजकल सब लोग कीर्तन मेला करना चाहते हैं, सिर्फ कीर्तन कोई ये सभी दर्शन तत्व दर्शन को नहीं सुनना चाहते आजकल, तो इससे क्या हो जाता है, सब मिश्र भक्ति शुरू हो जाता है या सहजीय संप्रदाय शुरू हो जाते हैं। तो बहुत सारा है ना हमारे पास चर्चा करने के लिए, ये तो सिर्फ एक है, इसके बाद में 18 ऐसे बड़े बड़े बुक है, और उसके बाद में और चैतन्य चरितामृत भी है, 9 वॉल्यूम्स। तो ये सब समझना है, चर्चा करना है, तो इसको सब संबंध ज्ञान कहते हैं। तो फिर उसके बाद अभिधेय जो भक्ति, भक्ति के बारे में हम बता रहे थे, तो भगवद्गीता में ये भक्ति के सर्वोच्चता को वर्णन करते हैं भगवान, सुपर एक्सलेंस ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो अलग अलग दृष्टिकोण से कैसे भक्ति कर्म से श्रेष्ठ है, ज्ञान से श्रेष्ठ है, योग से, योग पद्धति से वो कैसे श्रेष्ठ है, तो अलग अलग दृष्टिकोण से भगवान वर्णन करते हैं। और बहुत ही सरल है वो भक्ति, आसान है और बहुत ही शीघ्र हमें फल प्रदान करता है और हमें सर्वोच्च स्तर पर लेकर जाती है। तो ये सब चीज भगवान वर्णन करते हैं। एक उदाहरण के लिए हम लोग लेंगे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदा हम भक्ति उपहरतम अश्नामी प्रयतात्मना। तो ये भगवद्गीता का एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो भगवान क्या कहते हैं, जो मुझे पत्र पुष्प फल और थोड़ा जल भक्ति भावना से अर्पण करते हैं तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ, ऐसे कहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में वर्णन करते हैं कि कौन ऐसा मूर्ख है, ऐसे सरल सा सरल जो उपाय है, सरल सा सरल मार्ग है, वो स्वीकार करके सर्वोच्च स्तर को प्राप्त नहीं करना चाहता है, ऐसे कहते हैं। तो एक वो एक ऐसे एक हम तो ये ऐसे वाक्य प्रभुपाद वहाँ पर तात्पर्य में लिखते हैं। तो जब पहली बार ये भगवद्गीता यथारूप उसका प्रकाशित किया गया था तो ये पढ़कर भक्त लोग बहुत प्रभावित हो गए और हमेशा उसको उल्लेख किया करते थे अपने प्रवचनों में, आरंभ में, इस्कॉन में। भक्त लोग वो क्या है, वो हु इज सच अ फूल दैट ही डज नॉट वॉन्ट टू बी कृष्णा कॉन्शियसनेस बाई दिस सिंपल मेथड एंड दस अटेन द हाइएस्ट परफेक्शनल लाइफ ऑफ एटर्नल एटर्निटी ब्लिस एंड नॉलेज। कौन ऐसा मूर्ख है वो, ऐसे प्रभुपाद जी लिखते है कि नहीं। तो इतना आसान है ना, सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही आसान है, सिर्फ एक तुलसी दल अर्पण किया, थोड़ा जल अर्पण किया, तो वो गौतमीय तंत्र में और और विष्णु स्मृति में दोनों जगह पर एक और श्लोक आता है। सो तुलसी दल मात्रे न जलस्य छुलुके न वा, क्या है वो, एनीवे मैं प्रिपेयर नहीं किया। भक्तेभ्यो भक्तवत्सल, बीच का श्लोक एक लाइन मैं बोल रहा हूँ। तो वहाँ पर बताया गया है कि सिर्फ भगवान थोड़ा, भगवान को थोड़ा तुलसी जल और तुलसी दल और गंगा जल अर्पण करने से क्या हो जाता है, वो अपने आप को उस भक्त भक्त को बेच देते हैं वो भगवान, इसलिए क्योंकि वो भक्त वत्सल है और भक्ति उनको बहुत ही प्रिय है। तो ये भक्ति का महानता है और बहुत ही सरल है। तो श्रील प्रभुपाद वो एक पुराण से एक कथा भी वर्णन करते हैं, गोदावरी के तट पर एक स्थान था प्रतिष्ठानपुर करके, तो वहाँ पर एक ब्राह्मण रहा करते थे, बहुत ही गरीब थे वो, तो उनके पास कोई व्यंजन द्रव्य बहुत सारे सामान नहीं थे, भगवान को बड़े तो बहुत ही ऐश्वर्य युक्त सेवा करने के लिए उन्होंने प्रवचन में कई ऐसे प्रवचन में तो उन्होंने सुना था कि भगवान को आपके पास सेवा करने के लिए कोई सामग्री नहीं है तो भी क्या कर सकते हैं, सिर्फ भगवान की सेवा के ऊपर ध्यान कर सकते हैं, सिर्फ ऐसे ध्यान करने से भी हमें वो भक्ति का सेवा का फल मिल जाता है, ऐसे उन्होंने सुना था। तो फिर उन्होंने क्या किया, गोदावरी में स्नान किया, उन्होंने स्नान करके थट के ऊपर बैठ के वो ध्यान करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो पहले वो सभी नदियों में जो जो बहुत ही जो शुद्ध नदी है, धार्मिक नदी है, जो वो वहाँ पर जल है वो सब इकट्ठा किया उन्होंने, गंगे च यमुने च व गोदावरी सरस्वती, सभी नदी के जल को इकट्ठा किया उन्होंने। फिर भगवान के विग्रह को अभिषेक किया, नहलाया, फिर उनको वस्त्र से सजाया उन्होंने, आभूषणों से, वस्त्रों से। तो फिर उसके बाद भगवान को खीर बना के अर्पण भी करना चाहते थे वो, ऐसे उसके ऊपर ध्यान कर रहे थे। तो अर्पण करते समय उन्होंने सोचा कि भगवान को गरम जो खीर है वो अर्पण किया तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे या भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। तो उन्होंने सोचा कि मैं देखूं कि क्या ये अभी ठंडा हो गया कि नहीं। सामान्यतः खीर को ठंडा अर्पण किया जाता है, जब ठंडा हो जाता है तो खीर और मधुर हो जाता है। तो उन्होंने देखा क्या ये अभी ठंडा हुआ है या गर्म है करके ऐसे हाथ उन्होंने या उंगली उन्होंने डाल दिया। तो ऐसे नहीं डालते है उंगली, तो ऐसे ऐसे देखना चाहिए, तो या ऐसे तो ऐसे डाल दिया तो तुरंत उनका हाथ क्या हो गया, जल गया। वास्तव में वो खीर नहीं है वहां पर, सिर्फ वो ध्यान कर रहे, फिर भी उनका हाथ क्या हो गया, जल गया वो। तो फिर वैकुंठ में नारायण भगवान वो देख इसको देखकर हंस रहे थे वो। फिर लक्ष्मी देवी उन्होंने उनको पूछा क्यों हंस रहे आप, फिर मैं बताता हूँ ऐसे उनको पहले अपने विष्णु दूतों को भेज के इस व्यक्ति इस भक्त को वापिस वैकुंठ बुला लिया उन्होंने भगवान ने। तो बुला के फिर बाद में लक्ष्मी देवी को यह सब वर्णन किया इस भक्त के बारे में। तो ऐसे भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारा चीज़ होने की जरूरत नहीं, बहुत सारा चीज़ है तो वो भी हमें भगवान को अर्पण करना चाहिए। कभी कभी लोग क्या कहते हैं, अपने इंद्र तृप्ति के लिए सब कुछ रखते हैं और भगवान की सेवा के लिए कुछ नहीं रखते। तो कभी कभी लोग हम लोगों को भी बोलते हैं क्यों आप लोग ये इतना बड़ा बड़ा मंदिर बनाते हो, ऐसे बोलते हैं वो लोग। तो अपने लिए बहुत बड़ा अपार्टमेंट और घर चाहिए लेकिन भगवान के लिए महल नहीं चाहिए, है ना। तो ये सब नास्तिकवाद है। तो और आधुनिक समाज में सब लोग घर में भी कोई मंदिर नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा टॉयलेट को सजाते हैं लोग। तो ऐसे तो कहने का अर्थ है कि हमारे पास आत्मसमर्पण भावना होना चाहिए, तो सब कुछ भगवान को समर्पित करना चाहिए। तो नहीं है तो भी हमारे भक्ति भावना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो उससे भगवान क्या हो जाते हैं, प्रसन्न। क्योंकि इस श्लोक में क्या है, बार बार वो भक्ति भक्ति शब्द आता है ना। तो पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्त्या प्रयश्यति तद अहम भक्ति ऊपर रहता, भक्त्या भक्ति ये सब अलग अलग शब्द आते हैं, वो भक्ति शब्द अलग अलग रूपों में प्रस्तुत बताया गया। तो ऐसे भगवान को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है, सरल है, ये जो भक्ति के विधि है बहुत सरल है। तो फिर भी हमें ये भक्ति का विधि बहुत सरल है इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें उसको अच्छी तरह से समझना नहीं चाहिए। तो भक्ति को भक्ति सरल है लेकिन हम लोग उसको बनावटी नहीं बनाना चाहिए, बनावटी समझते आप, बनावटी भक्ति नहीं करना चाहिए, बनावटी भक्ति नहीं करना चाहिए। तो इस अभी आधुनिक समाज में क्या है, सब कुछ बनावटी आता है ना। आप दूध देखो वो सही में दूध नहीं रहता है ना, वो कुछ वाइट सब्सटेंस उसमें केमिकल डाल देते, वाइटनर है ना, डाल के पैकेट में पैक करके उसको बेचते हैं, सब कुछ बनावटी। आज हम लोग वो चर्चा कर रहे थे पेपर करेंसी के बारे में, तो हम लोग उसको और विस्तार से चर्चा करेंगे कि वो पेपर करेंसी क्या करता है। इन्फ्लेशन क्रिएट करता है। इन्फ्लेशन का अर्थ क्या होता है? वस्तुओं का, सामग्री का जो मूल्य है वो बढ़ जाता है, और जो धन का जो वैल्यू है वो कम हो जाता है, तो वो गैप आ जाता है। तो उसको ढकने के लिए क्या करते हैं आधुनिक समाज में, उसको कवर करने के लिए बड़े पैमाने पर बहुत ही चीप क्वालिटी का सामग्री को उत्पन्न करके क्या करते हैं, उसको बेचते हैं। हाँ, लोगों को लगता है कि हालांकि पेपर करेंसी में धन में क्या है, शक्ति नहीं है खरीदने के लिए, लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि मैं खरीद पा रहा हूँ करके। हाँ, बहुत हाइब्रिड वेजिटेबल, हाइब्रिड ग्रेन्स, बड़े पैमाने बहुत सारा वो हाइब्रिड, मतलब समझते हैं ना आप, हाइब्रिड बहुत, वो बहुत उसका उत्पन्न बहुत ज़्यादा होता है, है ना। तो ऐसे सब सब कुछ चीप क्वालिटी, आप बहुत सारा पैसा देंगे लेकिन फिर भी क्वालिटी अच्छा नहीं मिलता, आपको अनुभव रहेगा है कि नहीं समाज में। तो या एक उदाहरण देंगे, आपको असली गाय का घी चाहिए, कितना कितना धन देना पड़ेगा आपको बताइए? कोई भक्त बोल रहे थे मुझे 3,000 रुपये देना पड़ेगा, है कि नहीं। लेकिन आजकल मार्केट में बहुत सारा आपको मिलेगा गाय का घी करके, है कि नहीं। गाय का घी करके सब लोग उसको पैक करके क्या कर देते हैं, उसको उसके ऊपर सिक्का डाल के आपको आपको बेचेंगे करके। तो इसलिए सब क्या है, बनावटी आधुनिक समाज में, क्योंकि लोगों को असली चीज़ नहीं। तो हम लोग भक्ति को भी ऐसे बनावटी नहीं बनाना चाहिए, तो क्योंकि सब सब जगह वैसे बनावटी वातावरण रहता है, हम लोग भक्ति में भी आ जाते हैं तो सब बनावटी बना, उसको भी बनावटी बना देते हैं हम लोग। तो ये विज्ञान है भक्ति। इसलिए श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्रिक विधिम विना एकांतिकीर हरेर भक्ति उत्पातैव कल्पते, ऐसे बताएगा। श्रुति स्मृति पुराण पंचरात्र ये सभी वेद शास्त्रों के आधार पर जो भक्ति नहीं रहता वो क्या है, वो सिर्फ उत्पात है, वो डिस्टर्बेंस। हमारे जीवन में भी डिस्टर्बेंस और दूसरों को भी डिस्टर्बेंस करते हैं। यहाँ भक्ति संस्था में आ गए, वो संस्था में डिस्टर्बेंस हो जाता है ना। हमारा जो भक्ति है वो क्या है, संस्था में डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो ऐसे हमें सही में, इसलिए एक रूप गोस्वामी एक महान संत थे 16वीं सदी में, वो चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही प्रमुख अनुयायी माने गए उनको। तो जो गौड़ीय संप्रदाय में जो आते हैं, सही में जो गौड़ीय वैष्णव है उनको क्या कहते हैं, रूपाणु को कहते हैं, क्योंकि हम लोग रूप गोस्वामी के अनुयायी हैं, उनको अनुगमन करना है हमें, क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही शुद्ध भक्त थे। तो वो उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने उनको शक्ति प्रदान किया था कि भक्ति तत्व को, भक्ति विज्ञान को वर्णन करने के लिए। तो इसलिए उन्होंने बहुत सारा ग्रंथ रचना किया। एक ग्रंथ है भक्ति रसामृत सिंधु करके, तो भक्ति रसामृत सिंधु, तो भक्ति रसामृत सिंधु में ये सभी चीज़ वर्णन किया है उन्होंने, कैसे भक्ति करना चाहिए करके, बहुत सारे नियमों को वर्णन करते हैं। तो भारत में आजकल है ना, सब रिचुअल, जो पहले ज़माने में जो वैदिक जीवन शैली था, सभ्यता था, धार्मिक जीवन था, वो सिर्फ अभी क्या है, एक रिचुअल हो गया है भारत में, नाम के वास्ते कर लेना सब कुछ, है कि नहीं। तो लोग, या जब वो लोग भौतिक जीवन से पीड़ित हो जाते हैं, तो ऐसे नाम के वास्ते जो भक्ति होता है उसको करने से हमें उन पीड़ा से हम लोग मुक्त हो जाएंगे करके उसे आकर्षित हो जाते हैं, ऐसे कई सारे प्रतावों से। लेकिन उसको कैसे अच्छी तरह से करना चाहिए, शास्त्रोक्त शास्त्र के अनुसार करना चाहिए, वो समझना नहीं चाहते। और अपने भावना को भी शुद्ध करना चाहिए हमें, क्योंकि भगवान क्या बोलते हैं, भक्त लोग जब भक्ति भावना से पत्र पुष्प मुझे अर्पण करते हैं तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ, ऐसे कहते हैं, है कि नहीं? तो लोग क्या आधुनिक समाज में, क्योंकि उनको सब कुछ चीप चाहिए, तो इसलिए वो लोग अब हम उनकी भावना को साधना करके, साधन भक्ति करके, साधना करके भावना को शुद्ध नहीं करना चाहते, तो उनको सब कुछ क्या है, चीप चाहिए, आसानी से कुछ बता दो, ऐसे कुछ हम लोग कर लेंगे, ऐसे करके। तो भावना क्या है, हमें शुद्ध करना चाहिए, उसके लिए बहुत साधना करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु एक जगह पर करते हैं ना, जो लखपति है मैं उनके घर में ही जाता हूँ, ऐसे। इसका अर्थ क्या है, सिर्फ भगवान अमीरों के घर में जाते हैं, फिर ये गरीबों के बारे में वो क्या हो गया, पत्रम पुष्पम का क्या हो गया? तो इसका अर्थ है कि जो लोग हर रोज 1 लाख नाम जप करते हैं, ऐसे साधना करते हैं साधना के रूप में, उनके घर में मैं जाता हूँ, ऐसे बोलते। तो 1 लाख नाम जप करना हर रोज, तभी चैतन्य महाप्रभु आपके घर में आएंगे, तभी आप जो भोग अर्पण करेंगे, पत्रम पुष्पम अर्पण करेंगे, तभी वो भगवान स्वीकार करेंगे। तो और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी कहा करते थे, जो कलयुग में 1 लाख नाम जप नहीं करते हैं वो कौन है, वो पतित है करके बोलते। तो फिर भी शिल प्रभुपाद उन्होंने ऐसा नियम उन्होंने बनाया, प्रभुपाद जी मतलब नहीं ऐसा नहीं कहते क्या कि आप 66 माला जप मत करो, 1 लाख नाम जप मत करो, तो हो सके तो कर सकते हैं, तो कम से कम 16 माला करो, ऐसे बोले, और प्रचार में सहायता करो, ऐसे बोले। प्रभुपाद जी का एक जगह पर प्रभुपाद जी लगते हैं, हमारे आंदोलन में सभी भक्तों को ये निर्देश है कि कम से कम 16 माला जप करना चाहिए और अन्य समय जो है वो प्रचार सेवा में लगना चाहिए, प्रचार कार्य में लगना चाहिए, ऐसे कहते। तो ऐसे साधना करके हमें भावना को क्या करना चाहिए, हर रोज 16 माला जप करना है। तो 16 माला जप करके हमारे भावना को शुद्ध करना चाहिए, तब भगवान हम जो भी अर्पण करते हैं स्वीकार करते हैं। तो नहीं तो हमारा भक्ति क्या हो जाता है, तो वो बनावटी हो जाता है, या ऐसे तथाकथित दिखावा या ऐसे भक्ति होता है। तो एनीवे हम कह रहे थे रूप गोस्वामी के बारे में, रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख अनुयायी, उन्होंने भक्ति शास्त्र का रचना किया है, उन्होंने सभी वेदों को, ये सब रूप गोस्वामी और अन्य 6 गोस्वामी, वो सभी वेद शास्त्रों को अध्ययन करके वो बताएगा, नाना शास्त्र विचार नहीं कव निपुणो सद्धर्म संस्थापक, इस दुनिया में सद्धर्म को, सही धर्म को, असली जो धर्म है उसको स्थापना करने के लिए उन्होंने क्या किया, नाना शास्त्र विचार नहीं कर निपुणो, प्रभुपाद जी बोलते हैं अंग्रेजी में, स्क्रूटिनाइजिंगली स्टडीड ऑल द स्क्रिप्चर्स, वो सभी वेद शास्त्रों को बहुत ही गहराई में उन्होंने अध्ययन किया, अध्ययन करके उन्होंने इस भक्ति विज्ञान को प्रस्तुत किया। श्रील प्रभुपाद ये भक्ति रसामृत सिंधु को अंग्रेजी में अनुवाद किए, अभी अन्य भाषाओं में भी वो उपलब्ध है। सो वेन एवर सम प्रोग्राम्स आर देयर वी शुड हैव बुक्स ऑल्सो वेन लॉट ऑफ न्यू पीपल कम। तो वो भक्ति रसामृत सिंधु वो शीर्षक के नीचे लिखते हैं श्री प्रभुपाद, कैप्शन देते हैं वो, द कंप्लीट साइंस ऑफ भक्ति योगा, भक्ति योग के पूर्ण विज्ञान, ऐसे कहते हैं वो उसको। तो कहने का अर्थ है कि भक्ति क्या है, वो विज्ञान है। तो उस भक्ति रसामृत सिंधु में बहुत विस्तार से भक्ति का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, शुद्ध भक्ति का क्या अर्थ है, उत्तमा भक्ति का क्या अर्थ है, और उत्तमा भक्ति में क्या क्या बाधाएं आ सकते हैं शुद्ध भक्ति में, और उसको कैसे किया जाता है, अलग अलग अंग भक्ति के, अंग 64 अंग बताए गए हैं। तो उन सभी 64 अंगों में प्रमुख अंग 5 है, तो साधु संग, नाम कीर्तन, तो साधुओं का संग करना, नाम कीर्तन करना, गीता भागवत क्या करना, श्रवण करना, और मथुरावास, भगवान के धाम में जाना समय समय पर, कम से कम, या मन मानसिक दृष्टिकोण से वहाँ पर रहना चाहिए, हमारे मन वहाँ पर रहना चाहिए। प्रभुपाद जी जब न्यूयॉर्क में पहली बार गए थे तो वो प्रवचन में बता रहे थे, हमारे हृदय कहाँ पर है, वृंदावन में है। तो लेकिन हम गुरु के आदेश से यहाँ पर, गुरु के ओर से हम यहाँ पर आए हैं, ऐसे कहते हैं, कर्तव्य निभाने के लिए आए हैं, ऐसे बोलते हैं। तो ऐसे मथुरावास और श्रीमूर्ति का सेवन, श्रीमूर्ति का सेवना सेवन करना चाहिए, विग्रह का सेवा। तो आरंभ में अच्छा है, पहले भावना वगैरह, भावना शुद्ध करने के लिए हमें साधन करना चाहिए, विशेष करके हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, ये सभी गीता भागवत का अध्ययन करना, ये सभी भक्ति तत्व को समझना। तो बाद में धीरे 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 सभी ये विग्रह का वगैरह सेवा करना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाता है, वो उत्पात श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि का विधि बिना एकांत की हरे भक्ति उत्पात अवा कल्पते, ऐसे हो जाता है। और तो विशेष करके कलयुग में ये हरि नाम संकीर्तन को बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। तो सब कुछ बहुअंग भक्ति, रूप गोस्वामी वो भी वर्णन करते हैं, एकांग भक्ति और बहुअंग भक्ति, भक्ति के एक एक अंग को भी पालन करके परिपूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं, और कई सारे अंगों को पालन करके भी हम लोग परिपूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं, उसको बहुअंग भक्ति कहते हैं। तो हम लोगों को बहुत सारा एंगेजमेंट चाहिए, हम सिर्फ ऐसा नहीं कि आप बैठ के जप करो करके दिन भर आपको बोलेंगे तो हम लोग नहीं कर पाए, क्योंकि हम लोग ऐसे मुक्त अवस्था में नहीं है। हम लोग जैसे परीक्षित महाराज, उन्होंने क्या किया, 7 दिन तक उन्होंने निरंतर तो श्रीमद् भागवतम को श्रवण किया। तो अभी हम लोग आधा घंटा में कितनी बार सो के उठ जाते हैं हम लोग, है कि नहीं? तो हमें प्यास लग जाता है, भूख लग जाता है, है ना? आजकल कौन, आप बोल रहे थे भागवत सप्ताह में बीच बीच में सब वो टीवी चाय और कुछ स्नैक्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, हाँ, बीच बीच में ताकि प्यास ना लगे। तो हम लोग ऐसे तो श्रवण नहीं कर सकते, इसलिए हमारे आचार्य हम लोगों को कई सारे तो ये सब चीज़ वर्णन किया। तो क्या है, अलग अलग भक्ति के अंगों को, बहुअंग भक्ति को प्रदान किया हम लोगों को। उन्होंने हमारे ऐसे कई सारे विधियों को, अंगों को बताया था कि दिन भर हम लोग भगवान की सेवा में मग्न रहे। तो ऐसे और वर्णाश्रम धर्म को भी पालन करना चाहिए, नहीं तो भी हमारा भक्ति क्या हो जाता है, सुपरफिशियल हो जाता है ना। आप भगवान को एक दूध का अर्पण नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे बनावटी दूध को अर्पण करेंगे तो क्या वो भक्ति होता है, वो भक्ति होता है वो नहीं ना। तो वो भी दिखावा हो जाता है, है कि नहीं? तो ये सब चीज भगवद गीता से समझना चाहिए। तो और आरंभ में बहुत सारा चीज नहीं कर सकते हम लोग, तो धीरे 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 भक्तों के संभव में आके, तो हम लोग 16 माला नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम 4 माला तो करना चाहिए, ऐसे शुरू करना चाहिए, और हमेशा वही स्तर पर नहीं रहना चाहिए। और भगवद गीता यथारूप खरीदना और यथारूप उसको ऐसे ही रखना नहीं चाहिए, उसको खोल के पढ़ना भी चाहिए। तो ये सब करना चाहिए, घर में कीर्तन होना चाहिए, परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर कीर्तन भी करना चाहिए हर रोज, नहीं तो सब लोग क्या है, सब व्हाट्सएप में बिजी हो जाएंगे, है ना? व्हाट्सएप, फेसबुक, इंटरनेट, स्मार्टफोन, पहले टेलीविजन एक बदमाश था, अभी और ये बहुत सारा है, सो ये सब चीज आ गए हैं। वो छोटे बच्चे भी हमेशा वो इंटरनेट में बिजी रहते हैं, वो इंटरनेट पे गेम्स रहते हैं ना, पहले आजकल शहर में कोई जगह नहीं रहता खेलने के लिए उनको, और बाहर जाके थोड़ा खेलेंगे तो थोड़ा थोड़ा स्वास्थ्य तो अच्छा हो जाता है। तो बाहर तो जगह नहीं है, सब जगह बड़े बड़े रोड, फ्लाईओवर और बहुत ये सब अपार्टमेंट, मॉल्स और गाड़ियाँ सब ऐसे बना दिया। बच्चों को खेलने के लिए भी जगह नहीं है, और ऐसे वो लोग हमेशा बिजी रहते हैं वो इंटरनेट गेम्स में, तो ऐसे खेलते हैं। तो ये सब तो आरंभ में तो सब कुछ नहीं होता, धीरे 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 क्या करना चाहिए, सब हमारे जीवन को भक्तिमय बनाना चाहिए। नहीं तो हम लोग पशु की तरह जन्म लेंगे, पशु की तरह जिएंगे हम लोग, फिर मर जाएंगे, है ना। तो ऐसे टाई सूट बूट पहन के आहार निद्रा भय मैथुनम करना, वो भी एक ही चीज़ है जो पशु करते हैं, वो वही चीज़ है। तो आधुनिक समाज में लोग समझते हैं कि हम लोग बहुत प्रगति कर रहे करके, लेकिन हम लोग प्रगति क्या कर रहे हैं, सिर्फ ऐसे एक बहुत सोफिस्टिकेटेड एनिमल, बहुत प्रगतिशील द्विपद पशु बन रहे बस, है कि ना, प्रगतिशील द्विपद पशु। तो एक दूसरों को बहुत अच्छी तरह से हाय बाय, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड नाइट, ऐसे एक दूसरों को विश करना, और सिर्फ वही पशुओं का कार्य करना, है कि नहीं। तो ये आधुनिक समाज है, तो इसलिए धीरे धीरे धीरे, कम से कम आरंभ में नहीं तो धीरे धीरे ये सब चीज़ हमें अच्छी तरह से सीखना चाहिए और हमारे मनुष्य जीवन को परिपूर्ण करना चाहिए। तो हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप सब लोग, आपके जीवन सभी भक्तिमय बन जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। कोई प्रश्न, टीका टिप्पणी?
एक क्वेश्चन है, अभी बहुत सारे बच्चे भी हैं यहाँ पे छोटे छोटे, और ज़्यादातर लोग गृहस्थ हैं, मतलब विवाहित लोग हैं, तो फैमिली कैसे, मतलब ये क्वेश्चन मैंने पहले भी पूछा है, फैमिली कैसे मतलब चलाना चाहिए, जैसे कि बच्चे भी भक्ति में आए, पत्नी भी भक्ति में आए, पति भी, उनके माता पिता भी, कैसा उनका जीवन रहना चाहिए, पर डे का शेड्यूल कैसा रहना चाहिए, एवरीडे क्या क्या करना चाहिए। और दूसरा चीज कि भगवत गीता, जैसे कि हम लोग पुराने जमाने में नारियल फोड़ के ये सब पूजा पाठ करते थे, तो हम सिर्फ मतलब करते थे, बैकग्राउंड क्या है कुछ मालूम नहीं, तो भगवत गीता
पूरा
क्यों
पूरा
पढ़ना चाहिए?
ठीक है आप समझ ले, आपका प्रश्न पूरा प्रवचन हम इसी के ऊपर
मालूम
दिया।
है मालूम है, जस्ट समराइज करने के लिए, जस्ट समराइज करने के लिए, समराइज करने के लिए,
तो
जस्ट समराइज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग नए हैं।
हम बताए ना कि भक्ति के क्या है, पांच प्रमुख है, अंग है। तो पहला चीज क्या हमने बताया, साधु संग, भक्तों के संग में आना चाहिए। तो भक्तों के संग में आकर ये सब चीज़ सीखना है, कैसे करना है, क्या करना है करके। हम एक एक मिनट में तो सब कुछ बता नहीं सकते, है ना। तो एक चीज़ हम लोग बता सकते हैं, आप सब लोग भक्तों के संग में आ जाइए, उसको वो आने से आप सब कुछ सीख जाएंगे, है कि नहीं। तो भक्त लोग भी अच्छी तरह से सिखाना चाहिए सबको, शास्त्र के आधार पर, ठीक है। और कुछ, आपका कुछ प्रश्न था?
जी, बहुत कॉमन है आज के डेट में, मतलब ऑफिस में या घर में कई बार में, अब जैसे हम लोग माला करते हैं, चैंटिंग करते हैं, या हरे कृष्ण तो मंत्र का जाप करते हैं, तो बहुत सारे हमारे कलीग हैं, बहुत सारे मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं, अरे अभी क्या है टाइम यार, अभी बहुत सारा टाइम बाकी है, अभी से शुरू हो गया, तो इस टाइप के मतलब, और बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, मौजूद है इसमें, जस्ट आपके तरफ से कुछ एक दो लाइन उनके लिए।
हाँ, हम लोग वो कहते हैं ना, वो ये सब चीज़ भक्ति करना या आध्यात्मिक जीवन वो बूढ़े लोगों के लिए है। हाँ, हम लोग इंद्र तृप्ति में हम मग्न रहेंगे, ऐसे वो लोग कहते हैं। लेकिन हमारा मृत्यु कब आएगा हमको पता है क्या, किसी को पता है यहाँ पर? ये मृत्यु शब्द बोले तो सब लोग सोचते हैं अशुभ अशुभ करके, है ना। लेकिन वास्तविक तो है ना, है कि नहीं? सबको तो ये सामना करना पड़ेगा, है कि नहीं? एक दिन है कि नहीं? तो हम आपको शाप नहीं दे रहे कि आप आज ही मर जाइए करके लेकिन एक ना दिन तो हमें तो सामना तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए जागरूक रहना चाहिए। तो एक उदाहरण दिया गया खटवांग महाराज, तो वो देवी देवताओं की ओर से असुरों के साथ युद्ध कर रहे थे वो। तो युद्ध खत्म होने के बाद उन्होंने देवी देवता है उनको पूछा, उन्होंने आपको क्या वर चाहिए, हम कुछ देना चाहते हैं हमारे ओर से आपकी, आपने हमें सहायता किया। तो फिर उन्होंने क्या पूछा, मेरा मृत्यु कब आने वाला है वो बता दो मुझे करके। तो तब वो देवी देवता ने बताया अभी कुछ ही समय के बाद आपको मृत्यु होने वाला है करके। तो तुरंत ही वो भगवान के ऊपर ध्यान करना शुरू कर दिया। तो खटवांग महाराज को पता चल गया कि उनके मृत्यु कुछ क्षण के बाद है। और भागवत में भी हम लोग देखते हैं कि 7 दिन में उनका मृत्यु होने वाला था परीक्षित महाराज का। तो फिर उन्होंने क्या किया, वो बहुत बड़ा राजा थे, आज सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, उनका ऐसा राज्य था जहाँ पर एक भी पाप नहीं होता था ना? उनके राज्य में एक भी जगह नहीं था जहाँ पर मांस भक्षण होता था ना? ना? जो व्यभिचार होता था, मदिरा पीना या मादक द्रव्यों का सेवन करना होता था, तो एक भी ऐसा पापी व्यक्ति नहीं थे उनके राज्य में, ऐसे राजा थे ना? तो ऐसे वो राज कर रहे थे वो। तुरंत ही जब उनको पता चल गया 7 दिन में हमारा मृत्यु होने वाला है, तो वो क्या कर दिए, सब त्याग दिया उन्होंने। तो ऐसे बहुत उदाहरण देखते हैं। भरत महाराज भी, जिनके नाम से इस देश को भरत वर्ष कर कर गया, अभी मुसलमान ने हिंदुस्तान बना दिया इसको तो भरत वर्ष, तो भारत या भरत वर्ष। तो इस देश का नाम देश ये भरतवर्ष, मतलब पूरा पृथ्वी को भरतवर्ष माना जाता था क्योंकि भरत महाराज उनका राज्य पूरा पृथ्वी भर था। तो उन्होंने भी बहुत ही युवा अवस्था में उन्होंने सभी राज्य और परिवार, पत्नी बच्चे सबको त्याग दिया था उन्होंने। तो आध्यात्मिक जीवन जरूरी नहीं, मतलब सब कुछ त्याग करके जाना चाहिए हम लोगों को। तो भगवद गीता का पहला विद्यार्थी कौन है, अर्जुन है कि नहीं? अर्जुन भी गृहस्थ थे ना, है कि नहीं? अर्जुन भी गृहस्थ थे, उनका भी बहुत बड़ा जिम्मेदारी था राज्य चलाना। आपका छोटा परिवार को चलाना है कि नहीं जिम्मेदारी? कलयुग में प्रभुपाद जी एक जगह पर बोले कि कलयुग में एक छोटा सा परिवार को चलाना एक बड़ा साम्राज्य को चलाने के समान है। तो ऐसे बोलते। फिर भी तो हमें ये सब चीज़ समझना चाहिए। तो जब भी प्रहलाद महाराज यह बताते हैं 5 वर्ष से ही ये शुरू करना चाहिए, कौमार आचरे प्राज्ञो धर्मान भागवतानीय। हम आरंभ में बताया आजकल लोग क्या है, ये आधुनिक विज्ञान, आधुनिक शिक्षण और ये आधुनिक पूरा ये जो तथाकथित तकनीकी प्रगति, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इसके कारण सब लोग भ्रमित हो गए हैं। भ्रमित हो के वो लोग क्या सोचते हैं कि भगवद गीता या भक्ति जीवन क्या है, सब बकवास चीज़ है, सब बूढ़े लोग या कोई ये गीता महाभारत रामायण भागवत छोटे बच्चों को सुलाते हुए कुछ बोल देना चाहिए, बूढ़े लोग बोलना चाहिए, ऐसे वो लोग सोचते हैं। तो ये सब ये गलत प्रशिक्षण के कारण, रॉन्ग ट्रेनिंग फ्रॉम चाइल्डहुड, बचपन से ऐसे गलत प्रशिक्षण। आप यूनिवर्सिटी एजुकेशन, क्या आपको एजुकेशन में क्या सिखाया जाता है, आपको अच्छी तरह से पढ़ाई करो और जॉब ले लो और धन कमाओ और इंद्रिय भोग करो, कैसे अच्छा भौतिकवादी होना चाहिए, नास्तिक होना चाहिए और भौतिकवादी होना चाहिए, वही शिक्षण दिया जाता। तो भगवान भगवद्गीता में क्या बोलते हैं, ज्ञान हमें सर्वोच्च कौन सा स्तर पर, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। तो ज्ञान हमें कहाँ पर लेकर जाना चाहिए, आत्म साक्षात्कार या भगवान साक्षात्कार तो आत्म साक्षात्कार के स्तर पर लेकर जाना चाहिए, ज्ञान का उद्देश्य। लेकिन आजकल एजुकेशन का उद्देश्य है कैसे भौतिकवादी बनना चाहिए, ऐसे वो लोग सिखाते हैं। तो भगवान वो कहते हैं अमानित्वम अदम्बित्वम, ऐसे ज्ञान का अलग अलग अंग बताते हैं। और अंत में तो तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम ये तत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोण्यता, ऐसे कहते हैं इसको छोड़कर सब कुछ क्या है वो अज्ञान है बोलते। तो अज्ञान के कारण आधुनिक समाज पूरा, ये विशेष करके आधुनिक समाज क्या है, अज्ञान का एक सर्वोच्च प्रतीक है, या अज्ञान का एक मैनिफेस्ट फॉर्म, क्या बोलते हैं उसको, एक मूर्ति, अज्ञान का मूर्ति है, ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। तो इसके कारण लोग ऐसे सोचते हैं, अभी कर रहे हैं आगे जाके करेंगे ना भक्ति, क्या है आराम से ऐसे, ये क्या अभी शुरू कर दिया, ऐसे बोलते हैं। तो अज्ञान है, तो हमें ज्ञान में आना चाहिए। ठीक है, और कुछ आप वो माने या नहीं माने, आप आपका भक्ति आप करते रहिए। घर वाले भी नहीं मानेंगे तो उनको जो भी बोलते हैं हाँ हाँ करके अपना भक्ति करते रहना चाहिए। और कुछ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय, श्री शुक्र गौरांग की जय।